الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں سورہ مائدہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معرفت القرآن کی جلد نمبر 3 سے، اور آیت نمبر 6 اور 7 جو ابھی تلاوت کی گئیں تو ان کا ترجمہ ہم نے پچھلی کلاس میں مکمل پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے ربط آیات اور خلاصہ تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ان کے ربط میں یعنی پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا کیا ربط بنتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ ہرگز ہرگز بے ربط نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بات کا دوسری بات کے ساتھ کوئی ربط نہ ہو. بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے اکثر مقامات پر. ایک عام آدمی جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک بات ابھی چل رہی تھی، ایک دم سے اس کو ختم کر کے ایک دم ایک مختلف سی بات شروع ہو گئی ہو. لیکن جیسے کہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو پسند فرمایا کہ ان کو اپنے کلام کی اور اپنے دین کی زیادہ سمجھ عطا فرمائی، اور ان کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو اللہ نے چونکہ ان کو سمجھائی کہ بھئی یہ ربط ہے، اور پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ کیا ربط ہے، اور باقی لوگوں کو ان کا محتاج بنا. یا اس معاملے کے اندر وحی کی تفسیر میں اور اس کے جو معانی و معارف ہیں، اس معاملے میں عوام الناس کو ان حضرات کا محتاج بنا دیا. جس طریقے سے کھیتی باڑی میں کھانے پینے کی فراہمی میں علماء کرام کو کسانوں کا محتاج بنا دیا، ٹھیک ہے نا. اب مولوی صاحب جو ہیں وہ جا کر کے کھیتی باڑی کر کے اپنا اناج نہیں اگاتے ہیں، اور نہ اس کو جو ہے وہ یعنی سارا کام کرتے ہیں اناج وغیرہ کا، نہیں، بلکہ یہ کام کسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کسان اگر یہ کام نہ کریں تو مولوی صاحب جو ہیں وہ تفسیر پڑھ پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھر سکیں گے، اور تفسیر لکھ لکھ کر کے اپنا پیٹ نہیں بھر سکیں گے، الا یہ کہ پھر وہ سارا کام خود ہی کرنا شروع کر دیں، جو کہ آبویسلی زمانے کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ دشوار ہوتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسانی معاشرہ بنایا ہے، اور یہ اسی سورہ مائدہ ہی کی تفسیر میں ہم شروع میں یہ بات پڑھ بھی چکے ہیں. اچھا، تو ربط آیات پھر کیا بیان فرمائے کہ پچھلی آیات میں کچھ احکام شرعیہ وہ ذکر کیے گئے کہ جن کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی اور کھانے پینے سے ہے، اس آیت میں چند احکام شرعیہ متعلق عبادات کے ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اس والی چھٹی والی آیت کے اندر عبادت سے متعلق، تو یہ تو بہت ہی آسان سا ایک ربط تھا بظاہر، ہمیں بھی اگر عام آدمی بھی دیکھتا تو اس کو شاید سمجھ میں آ جاتا. تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس مقامات کی بات کر رہے تھے. تو ربط آیات پڑھ کے پھر خلاصہ تفسیر جو کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے، تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، جب تم نماز کو اٹھنے لگو، اذا قمتم الى الصلاۃ، तो ये जो अंडरलाइंड यानी तहत सतर जो अल्फाज होते हैं ये तर्जुमा होता है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर तफसीर होती है, बयानों पर अपनी तफसीर जो है वो एक्चुअली खाली ब्रैकेट्स के अंदर जो इबारत है वो है। तो फरमाते हैं कि यानी नमाज पढ़ने का इरादा कर और तुमको उस वक्त वजू ना हो, यानी तुम हालत वजू में नहीं हो, तो तुम वजू कर लो। ठीक है, फा का तर्जुमा तो से किया, इस वजह से अंडरलाइन लिखा इसको कि ये तर्जुमा है, और फिर उसके बाद वुजू कर लो, ये फिर तफसीरन लिखा, और फिर वुजू का तरीका जो अल्लाह ताला ने अल्फाज में बयान फरमाया, इग्सिलू वुजूहकुम, तो उसका तर्जुमा क्या कि अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो। ठीक है, तो इग्सिलू जो है वो कोहनियों इलल मराफिक के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है इसका आतफ, तो अपने हाथों को कोहनियों समेत धो और अपने सरों पर भीगा हाथ फेरो। ठीक है, वमसहू बिरुउसिकुम, मसाह करो अपने सरों के ऊपर, तो हजरत ने फिर तफसीरन लिखा भीगा। ठीक है, यानी मसाह जो है ना वो सूखे हाथ से करोगे तो वो वजू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भीगा हाथ मुराद है, यानी गीला हाथ उससे फेरो, और अपने पैरों को भी टखनों समेत धो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, तो ये जो धोने का हुक्म यहाँ पे लगा है, तो पिछली क्लास में बात हो चुकी थी कि उसकी वजह ये है कि फ़ग़सिलू का जो अमर है, फ़ेले अमर है, ये अर्जुलकुम के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अर्जुलकुम जो है ये हालत नसब में है। ठीक है, वमसहू का हुक्म जो है वो अर्जुलकुम के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, हालांकि अर्जुलकुम तो आ रहा है वमसहू के बाद, वमसहू के बाद बिरूसकुम भी आ रहा है और अर्जुलकुम भी जो है वो वमसहू के बाद आ रहा है, तो भाई मसा जो है वो पैर के ऊपर क्यों ना करो। उसकी खाली वजह क्या है कि वमसहू के बाद ये बा जो है ना वो बा जो है वो रूस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और अर्जुलिकुम अगर होता तब जो है वमसहू की मसा वाला जो है ना, क्योंकि मसा जो है वो बा के साथ ही अप्लाई होता। ठीक है, तो बे अर्जुलिकुम होता तो फिर मसा किया जाता, लेकिन बे अर्जुलिकुम यहाँ पे नहीं है, बल्कि फ़ख़सिलू का ये मफ़ूल बन रहा है, इसी वजह से हालत नसब में है। तो बहरहाल ये बात पीछे भी हो चुकी थी, तो अपने पैरों को भी टुफनों समेत धो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो। ठीक है, यानी नमाज से पहले क्यों लिखा हुआ, इन कुन तुम जुनूबन फत्ताहरू, इसका मतलब ये है कि अगर जनाबत की हालत में हो तो तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बल्कि यहाँ पर हजरत ने जगह की तंगी या वक्त की तंगी जो भी, इस वजह से ये कुरान मजीद भी जो है तुम हालत जनाबत के अंदर छू नहीं सकते हो, तो बस नमाज का जिक्र कर दिया, कुरान मजीद के छूने का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल है। तो जनाबत की हालत में नमाज भी नहीं पढ़ सकते और कुरान मजीद को छू भी नहीं सकते, तो सारा बदन पाक कर। और अगर तुम बीमार हो, वइन कुन तुम मरदा, मरीज हो, या हालत सफर में हो, औ अला सफरिन, ठीक है, तो इसकी तफसीर क्या लिखी, और पानी नहीं मिलता जैसा आगे आता है, तो ये तो उजुर की हालत हुई कि पानी मिलता ही नहीं है, तो आप माजूर हैं कि भाई पानी आपको मिल नहीं रहा, या अगर मर्ज और सफर का उजर भी ना हो बल्कि वैसे ही वुजू या गुसल टूट जाए, इस तरह से कि मसलन तुम में से कोई शख्स पेशाब या पखाने के इस्तिंजे से फारिग होकर आया हो जिससे वुजू टूट जाता है, या तुमने बीवियों से कुर्बत की हो जिससे गुसल टूट जाता है, और फिर इन सारी सूरतों में तुमको पानी के इस्तेमाल का मौका ना मिले, तो औ जा अहद मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुम निसा, तो ये सब इनकुन तुम मरदा के साथ साथ चल रहे हैं ना, इनकुन तुम मरदा अगर तुम मरीज हो या सफर में हो, या तुम में से कोई गायत में से आया है, यानी ये जो फरमाया कि इस्तिंजा से फारिग होकर के आया है, औ लामस्तुम निसा यानी कि बीवियों से गुर्बत की हो, فلم تجدوا ماء، تم اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو پھر کیا کر لو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو فلم تجدوا ماء، پانی کو نہ پاؤ تو اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے، خواہ بوجہ ضرر کے یا پانی نہ ملنے کے. ٹھیک ہے، بوجہ ضرر کا مطلب کہ جب پانی کے استعمال سے تمہیں کوئی نقصان ہو جانے کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے، نقصان کیا ہوتا ہے پانی کے استعمال سے، کیا ہو سکتا ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ پانی کے استعمال سے بڑھ جاتی ہے، جیسے زخم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور زخم کے اوپر اگر پانی جائے گا تو وہ زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا یہ کہ کسی اور قسم کی بیماری. ویسے تو بخار وغیرہ میں تو پانی کے استعمال سے جو ہے وہ بخار کے بڑھنے کا بظاہر لگتا ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ ڈاکٹرز وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں پانی، اور نبی رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ اپنے بخار کو پانی کے ذریعے سے ظاہر کرو. تو یہاں پہ ضرر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو کہ پانی سے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، تو اس وجہ سے اگر تم پانی کو استعمال نہ کر سکتے ہو، یا یہ کہ پانی تمہیں مل ہی نہیں رہا، تو ان سب حالتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. تو فتیمموا صعیدا طیبا، اور پھر اس کے بعد اس کی طریقہ بتا دیا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ تم مسح کر لو اپنے چہروں کو اس سے. ٹھیک ہے، دیکھیں امسحوا کے بعد پھر با کا آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ساس لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. تو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کو اس سے، یعنی سیدن تو یہ پاس ہے مسا کر. نہیں حافظ جب نہیں، کیا کیا کہتے ہیں جب کسی فعل کے بعد جیسے با آتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کہ اس کا حرف جر تو یہ ہے لیکن اکثر اس کا ذکر آتا رہتا ہے. نہیں نہیں مقبول نہیں. اچھا چلیں بہر رہا ہوں، یہاں پہ برت نہیں پڑتا. تو اب ساری گرامر یہاں پہ آپ لوگ سوال کر رہے ہیں، متعلق نہیں مجبور نہیں، کچھ بھی نہیں اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ لفظ جو ہے نا وہ آپ نے کسی کو بھی ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقرر فرمانے سے یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. ٹھیک ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، چنانچہ احکام مذکورہ میں خصوصاً اور جمیع احکام شرعیہ میں عموماً رعایت، سہولت اور مصلحت کی ظاہر ہے. کس چیز کی رعایت ہے؟ سہولت و مصلحت کی. ٹھیک ہے، جتنے احکام شرعیہ ہیں ان کے اندر سہولت و مصلحت کی رعایت ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے، لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہاں، جو لفظ مجھے نہیں ذہن میں آ رہا تھا وہ الحمدللہ آ گیا، صلہ. ٹھیک ہے، کہ یہ با کا صلہ آ رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ ومزہ کے ساتھ جو ہے نا وہ با کا صلہ جو ہے وہ آتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے. جس سے لوگ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، جا زیدن و رئی تو زیدن، لیکن مررتو کے بعد کیا ہوتا ہے، مررتو کے بعد زیدن نہیں ہوتا، نہ زیدن ہوتا ہے، بلکہ مررتو کے بعد بے زیدن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مررتو کے بعد جو ہے نا وہ با کے بغیر بات نہیں بنے گی، تو بے زیدن ہونا ضروری ہے. حالانکہ جا کے بعد جو ہے وہ زیدن تھا، رئی تو کے بعد جو ہے وہ زیدن تھا، با تو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن مررتو ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے بعد با لگائے بغیر کام نہیں بنے گا، بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اسی طریقے سے امسحو کا جو فعل ہے نا اس کا بھی یہی بہرحال، تو با کا صلہ. اچھا، تو بیک ٹو ویئر وی ور، اس لیے طہارت کے लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि तुमको पाक साफ रखे, इसलिए तहारत के कवायद और तुरुख मशरू किए। कवायद बता दिए, उसूल कवायद इनको कहते हैं। और तुरुख क्या होते हैं? तुरुख का लफ्ज जो है वो तरीक की जमा है, और तरीक ही से उर्दू का लफ्ज तरीका बना, ठीक है, यानी जिसको के अंग्रेजी में मेथड कहते हैं, तरीका, ठीक है। तो एक होता है काम का उसूल और एक होता है काम करने का तरीका। तो अल्लाह ताला ने हमें दोनों चीजें बता दी हैं, उसूल भी और तरीका भी। खाली उसूल से काम नहीं बनता, बल्कि काम करने के लिए तरीका भी जरूरी होता है। और अगर तरीका ही पता हो, यानी बस तरीके पते हैं, पता हो, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके बनाए हुए लेकिन उसूल कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा कि बस जिसकी जो समझ में आएगी वो वही काम करेगा। उसूल कोई भी नहीं है, ठीक है, जड़ कोई भी नहीं है, तो हर कोई अपने हिसाब से फिर करता रहेगा उससे सीधा। तो यही मामला जो है वो इस बात पर भी अप्लाई होता है कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला का मकसद ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर तंगी डाले। तो अब अगर हर बंदा अपने हिसाब से इसको इसका तरीका बनाएगा कि अच्छा मेरे ख्याल में तंगी ये है, मेरे ख्याल में तंगी ये है, मेरे ख्याल में तंगी ये है, कोई और कहेंगे आंटी आकर के मेरे ख्याल में तंगी तो ये होती है, तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म तो रहेगा ही नहीं, बस हर बंदे का अपना हुक्म चल रहा होगा, ठीक है। हर बंदे के पेट के अंदर एक नफ्स रहता है, राइट, तो हर बंदे का नफ्स जो है वो अपना खुदा बना हुआ होगा और अपना जो है वो तरीका बना रहा होगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसा मामला रखा नहीं, रख लेते तो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन रखा ही नहीं तो अब हम क्या करें भाई, ठीक है। ऊपर से एक हुक्म अल्लाह ताला ने नाजिल किया, बल्कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म बनाया और फिर उसको अपने नबियों के जरिए से बताया, और फिर जिन लोगों को नबियों का वारिस बनाया यानी उलमाए कराम, उनके जरिए से समझाया। तो ये तीन अल्फाज अगर हम याद रखें बहुत आसानी होगी। हुक्म बनाया किसने? अल्लाह ने। हुक्म बताया किसने? नबी ने। और हुक्म समझाया किसने? उलमाए कराम, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग काम हैं और तीनों अलग अलग लोगों ने किए हैं। ना तो मौलवियों ने हुक्म बनाया है, ठीक है, और ना मौलवी जो है वो उन्होंने इंसानियत को हुक्म बताया है, बल्कि मौलवियों ने जो है वो इंसानियत को हुक्म सिर्फ समझाया है। बताया किसने है? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, और नबी अलैहिस्सलाम ने बनाया भी नहीं, ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम बनाने वाले भी नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम भी बताने वाले हैं, बनाने वाले सिर्फ अल्लाह रब्बुल ही है। क्यों अल्लाह ताला है, नबी अलैहिस्सलाम क्यों नहीं है? इसलिए कि खालिक जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम नहीं है, खालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो जिसने बोर्ड गेम बनाया तो वही उस बोर्ड गेम के उसूल भी बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बोर्ड गेम बनाया किसी ने और उसूल जो है ना वो कोई और उसके डिफाइन कर रहा है, बल्कि मैन्युफैक्चरर जो होता है या क्रिएटर जो होता है ना वही उसूल भी डिफाइन करता है। हाँ, फिर वो किसी को बता देता है कि हाँ भाई मैंने तुम्हें सारे उसूल बता दिए, अब तुम बाकी लोगों को बता देना, तो ये नबी का काम होता है। अच्छा, ये रिपीट करने के लिए कोई कह रहा है कि हुक्म बनाया, समझाया एंड बताया, नहीं, पहले पहले बताया आता है फिर उसके बाद समझाया। बनाया अल्लाह ने, बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, और समझाया उलमाए कराम, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए तहारत के कवायद और तुरुक मशरू किए गए, यानी शरीयत के अंदर ये शरीयत का हिस्सा बना दिए गए, ये मशरू कर दिए गए, यानी ये डिक्लेयर कर दिए गए कि भाई ये अल्लाह ताला का तरीका है, अल्लाह ताला का दीन है। और किसी एक तरीक पर बस नहीं किया गया कि अगर वो ना हो तो तहारत मुमकिन ही ना हो। मसलन सिर्फ पानी को मुतहर रखा जाता, पाक करने वाला अगर सिर्फ पानी को रखा जाता तो पानी ना होने के वक्त तहारत हासिल ना हो सकती, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो हर जगह तो मौजूद नहीं होता, ठीक है। बेशक ओशन जो हैं वो दुनिया के अंदर 1/4 ऑफ द सॉरी 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज ओशंस, और ओशंस के अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है, लेकिन उसके बावजूद कितने बड़े बड़े और गहरे गहरे ओशंस हैं, लेकिन फिर भी जमीन के ऊपर ऐसे मुकामात हैं जहां तक पानी नहीं पहुंचता, रेगिस्तान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या पहाड़ में जहाँ कहीं पानी कोई नहीं है, तो अब क्या बंदा नापाक रहेगा क्योंकि पानी नहीं है? तो अगर सिर्फ पानी मुतहर होता तो फिर मुश्किल हो जाती ना, पानी तक पहुंचना होता, पानी को अपने तक पहुंचाना होता। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव रखा कि सईदन तैयब, ठीक है, कि अर्थ की कोई भी पाक फॉर्म हो बस बस वो तुम्हारी तहारत के लिए काफी है अगर पानी मौजूद। तो इससे पता क्या चलता है, वही कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहत क्या है कि हम पाकीजा रहें, ठीक है, हम पाकीजा रहें। ठीक है, तो अल्लाह ताला की चाहत क्या है कि हम पाकीजा रहें। तो उस चाहत के लिए फिर अल्लाह ताला ने दो आसान रास्ते बना दिए कि भाई पानी, और अगर पानी नहीं तो फिर सईद तैयबा, पाक मिट्टी। ये समझने के, ये चीज जो है ना वो अल्लाह की चाहत है, अल्लाह ताला जो है वो यानी ये पाकीजा रहना ये महमूद कहलाएगा, ठीक है, प्रेज वर्दी पोजिशन टू बी इज पाक रहना, ठीक है। अच्छा, यानी फजर से लेकर के जोहर तक अगर जो है वो 6 से लेकर 12, 6 घंटे होते हैं, तो उस 6 घंटे में आप नापाक भी रह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि नमाज तो नहीं पढ़नी, इशराक की नमाज फर्ज तो नहीं है, फजर की नमाज फर्ज थी, ठीक है, तो फजर तो पाकिजगी के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद नापाक हो गए। अब आप नापाक रह रहे हैं, रह रहे हैं, रह रहे हैं, हत्ता के 12 बजे जो है वो जोहर का वक्त दाखिल होता है, और जोहर का वक्त खत्म होता है हनफी एतबार से देखा जाए तो 4 बजे खत्म होता है। तो आप जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक नापाक रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि नमाज आप 3:30 बजे भी पढ़ सकते हैं, वक्त खत्म होने से पहले पहले तक, जोहर का वक्त खत्म होने से पहले पहले तक आप जो है वो पाकीजा हो जाए और जो है नमाज पढ़ लें, ठीक है। तो पाक रहना जो है फर्ज नहीं है जब तक कि नमाज फर्ज ना हो, ठीक है। तो नमाज तो फर्ज उस वक्त होगी ना कि जब जो है वो वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि इंतहाई वक्त तक गुंजाइश है नमाज पढ़ने की। हाँ, ऊला वक्त में पढ़ने का सवाब ज्यादा है, फायदे ज्यादा हैं, लेकिन गुंजाइश तो आखिरी वक्त तक है, ठीक है। तो आप जो है वो नापाक रह सकते हैं फजर के नमाज पढ़ने के बाद से लेकर के असर का वक्त शुरू होने से इतना पहले तक कि जिसमें कि आप जोहर मुकम्मल पढ़ सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला को महबूब क्या चीज है, क्या चीज पसंदीदा है कि पाक रहे, तो जल्द से जल्द जो है वो तहारत हासिल कर लें और पाकीजगी की हालत में आ जाए। बेशक फर्ज नमाज जो होगी वो आप 12 बजे भी पढ़ सकते हैं, जोहर की 1 बजे भी पढ़ सकते हैं, 2 बजे भी पढ़ सकते हैं, 3, 3:30 बजे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पाकीजा रहेंगे तो ये काबिले तारीफ बात होगी, अल्लाह ताला को पसंद है ये वाली बात। लेकिन पाकीजगी का ये स्टैंडर्ड, ठीक है, महमूद है लेकिन फर्ज नहीं है जब तक के किसी फर्ज के लिए उसकी जरूरत ना पड़ जाए, ठीक है। वैसे हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, मकसद जिंदगी क्या है? पाकीजा रहना नहीं, पाकीजा रहना ये अफजल मुकाम है, मकसद जिंदगी नहीं है। मकसद जिंदगी क्या है? इबादत करना, ठीक है, इबादत करना। तो मकसद जिंदगी है इबादत करना। तो इससे क्या पता चला, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इल्ला लियाबुदून, हमने पैदा किया ही नहीं जिन्हों और इंसों को सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें, ठीक है ना। अगर अल्लाह ताला फरमाते वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियुतहहिरून, कि हमने तो पैदा किया ही नहीं जिन्हों को ना इंसानों को सिवाय इसके कि वो पाकीजा रहे, ठीक है, तो फिर हर वक्त हर लम्हे पाकीजा रहना, हर लम्हे पाकीजा रहना जो है ये हमारे लिए जरूरी हो जाता, और अगर पाकीजा नहीं रहते तो फिर लॉस होता, ठीक है। लेकिन लियुतहहिरून नहीं फरमाया बल्कि लियाअबुदून फरमाया, इबादत करें। तो इबादत का मामला क्या है कि इबादत तो हमने हर लम्हा करनी, इबादत ऐसा काम है जो कि हमने हर लम्हा, हर आन, हर लहजा करना है, ठीक है। तो अब जो है वो हम तो नमाज पढ़ने को इबादत कहते हैं, तो मसला ये हो गया कि वो तो फजर के वक्त पढ़ेंगे, और फिर जो है वो 7-8 घंटे के बाद जोहर के वक्त पढ़ेंगे। बीच का वक्त क्या कर रहे हो भाई, बीच के टाइम में क्या कर रहे हो, यानी बंदगी नहीं कर रहे, जिसको इबादत को उर्दू में क्या कहते हैं, बंदगी। बात समझाने के लिए उर्दू का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदगी। बंदगी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बंदगी का उल्टा तो फिर गंदगी ही होता है। तो आप 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, या सॉरी सॉरी 3:30 बजे तक आप गंदगी फैलाते फिर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं। बल्कि इबादत एक ऐसा काम है जो कि ना सिर्फ ये कि हमने हर लम्हा करना है, बल्कि हम हर लम्हा कर सकते भी हैं, हम हर लम्हा कर सकते भी हैं। वो कैसे कि किसी भी लम्हे हम अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी ना करें, नाफरमानी के मुर्तकिब। अगर हम किसी भी लम्हे अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी के मुर्तकिब हो गए, इसका मतलब यह कि हमने इबादत नहीं करी, सुन, उसमें हमने इबादत नहीं करी। और अगर हम नाफरमानी के मुर्तकिब नहीं हो रहे, इसका मतलब यह कि हमने इबादत की है, ठीक है। तो इंसान अपने एक एक लम्हे को इबादत बना सकता है, ये उसके लिए ऐन मुमकिन है और बहुत आसान भी है एक्चुअली, ठीक है, बहुत आसान भी है एक्चुअली। तो इबादत और तहारत के दरमियान थोड़ा सा एक रिलेशनशिप सी बन रही थी, तो वो इस आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही है। अब ये और बात है कि किसी को समझ में ना आई हो तो मेरी गलती है, जाहिर सी बात है, समझा नहीं पाया। तो उन्होंने, किसी ने लिखा भी है डायरेक्ट मैसेज में, जरा लंबा सा, कि आई डेंट गेट दिस पॉइंट, इफ देर इज नो वाटर एंड यू हैव टू टेक बाथ, सो हाउ कैन वी यूज पाक मिट्टी। मतलब गुसल जरूरी नहीं है, वुजू कर लें दो गुसल फर्ज हो जाए। वेरी कंफ्यूजिंग, इफ यू कैन टेल दिस इन आसान अल्फाज आई बी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। अच्छा, सर्वर तो खैर हम नहीं है, लाना करे हम कहें सर बन जाए। सर वैसे सर के ऊपर लगा, मुंह के ऊपर लगा होता है, उसको सर कहते हैं हमारी जुबान के अंदर। अंग्रेजों का जो सर है ना, उससे तो अल्लाह बचाए, ठीक है ना, हम वो वाला सर ना बनना चाहते हैं ना उसके। खैर बहरहाल, तो सर नहीं कही। अच्छा, तो आपने जो लिखा ना कि जी अगर आपके पास पानी नहीं है और गुसल करना फर्ज हो गया है तो फिर क्या करें, तो भाई तयम्मुम करें। तयम्मुम, तयम्मुम करना आता है कि नहीं आता, ठीक है, तयम्मुम करना तो सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे बचपन में तो तयम्मुम सबसे पहले सिखाया जाता था। तो तयम्मुम करने का तरीका क्या था कि कोई भी पाक मिट्टी की चीज हो, हत्ता की दीवार के ऊपर डस्ट भी हो, ठीक है, तो उस डस्ट के ऊपर आप दोनों हथेलियां रखें, ठीक है, और फिर उसको जो है वो झाड़ भी दें, यानी एक ताली सी बजा लें, उससे जो है ना वो, अगर डस्ट आपके हाथ पे ज्यादा लगी है तो ताली बजाने से वो एक्स्ट्रा डस्ट जो है वो गिर जाएगी। अब उन हथेलियों को अपने मुंह के ऊपर फेर दें, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से हथेलियों को जो है वो डस्ट की चीज के ऊपर रखें, गर्द आलूद चीज के ऊपर, या रेत के ऊपर, या मिट्टी के ऊपर, और फिर उसके बाद उससे दोनों हाथों का मसा कर लें, यानी पहले उल्टे हाथ से जो है वो सीधे हाथ को कोहनियों तक पूरा फेर लें उसके ऊपर, उल्टे हाथ को सीधे हाथ को, सीधे हाथ पर कोहनियों तक फेर लें, फिर उसके बाद सीधे हाथ से उल्टे हाथ के ऊपर फेर लें, सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर फेर लें कोहनियों तक, दैट्स इट, ये तयम्मुम किया। अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम से पाकी हासिल हो जाती है नमाज पढ़ने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए, ठीक है। और फिर जज़ाकअल्लाह, आखिरी अहम बात कहने वाला था कि तयम्मुम विल फिनिश एज सून एज वाटर इज अवेलेबल, जैसे ही पानी अवेलेबल हो गया तो तयम्मुम जो है फिर आपका खत्म हो जाएगा, यानी पानी की अवेलेबिलिटी तयम्मुम को खत्म कर देती है। अच्छा, अब अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है और नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो ये नहीं है कि भाई घर में पानी नहीं आ रहा था तो इस वजह से पानी अनअवेलेबल है तो अब जो है ना मैं तयम्मुम कर लूंगी, नहीं, पानी को तलाश करना पड़ेगा। हत्ता के अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पे कि 1 मील तक तलाश करने से आपको पानी नहीं मिलता, तब आप तयम्मुम कर सकते, ठीक है। तो पानी को तलाश करना पड़ेगा, पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन एक सर्टन समझ लें कि मुशक्कत के दर्जे तक ही तलाश करने की मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर पानी जो है ना वो किसी पड़ोस के घर से मिल जाता है, या जो है वो मस्जिद के बाथरूम से मिल जाता है, तो फिर वजू ही करना होगा अगर मस्जिद दूर नहीं है, ठीक है। तो या फिर बाकी बहुत सारी तफसीलात इसके अंदर आ जाएंगी, तो वो तो इस क्लास में हम सारी कवर नहीं कर सकते। तो ये है बेसिकली, ठीक है। तो तयम्मुम है ना, सिर्फ हाथ को मुंह पे फेर लेना और दोनों आर्म्स तक फेर लेना, ये आपके गुस्ल का कायम मुकाम हो जाए, गुस्ल का मुतबादिल हो जाए, ठीक है। तो इसमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा तो बता दिया गया, खैर अगर और भी कंफ्यूजन है तो इसलिए अहकाम की। अच्छा तो फरमाते हैं कि पानी ना होने के वक्त तहारत, अगर यानी अगर सिर्फ पानी को मुतहर रखा जाता तो पानी ना होने के वक्त तहारत हासिल नहीं हो सकती थी। ये तहारत है अबदान तो खास अहकाम तहारत ही में है, ठीक है। यानी बदन की तहारत जो है ना, जो कि वुजू के जरिए से बताई गई और गुसल के जरिए से बताई गई और तयमम के जरिए से बताई गई, ये बदन की तहारत है। इसके तीन तरीके अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर बयान फरमा दिए, ठीक है। और यही तीन तरीके हैं, बाकी और तफसील इसकी हो सकती है। वुजू टूटने के अहकाम तयमम पर भी, वुजू टूटने के अहकाम, हाँ, जिन चीजों से वजू टूट जाता है उन्हीं चीजों से तयम्मुम भी टूट जाता है, ठीक है। यानी गैस का खारिज हो जाना, खून का निकल जाना, खून का निकल करके खाल के ऊपर बह जाना और सो जाना, ठीक है, टेक लगा के सो जाना, इनसे जो है वो तयम्मुम भी खत्म हो जाता है जैसे वजू खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये तो तहारत अबदान की बात हुई। अब जो है वो तहारत कुलूब, कुलूब का मतलब क्या कि जो हमारे अंदर रूह है, बदन के अंदर जो रूह होती है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जब वो निकल जाती है तो हम मर जाते हैं, तो तहारत रूह उसी को तहारत कुलूब भी कहते हैं। ये तमाम ताआत में आम है, ठीक है, ये तमाम ताआत में आम है। यानी अच्छा क्या लिखा है उन्होंने, क्या क्या ऐसा किसी हदीस में आया है कि ज्यादा देर हालत जनाबत जनाबत में रहने से इंसान का रिस्क कम हो जाता है? मेरे जहन में कोई ऐसी हदीस इस वक्त नहीं आ रही, वही पता नहीं, हो सकता है हो या हो सकता है ना हो, हदीस का तो बहुत बड़ा जखीरा है तो नहीं कह सकते, इतना तो बड़े मुहद्दिस हम है नहीं, हम तो खैर छोटे मुहद्दिस भी नहीं है, बड़े मुहद्दिस होना दूर की बात है, वो नहीं मालूम। तो रिस्क की कमी के और होती है, गुनाहों की वजह से जो है वो रिस्क के अंदर कमी आ जाती है वगैरह, लेकिन ये पसंदीदा फेल नहीं है, जाहिर है जनाबत की हालत में ज्यादा देर रहा जाए। अच्छा तहारत कुलूब तमाम ताआत में आम है, ठीक है, यानी अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी इससे जो है वो तहारत कुलूब मिलती है, यानी हमारी रूह पाकीज़ा होती है, और अल्लाह के किसी भी हुक्म की नाफरमानी करने से ये रूह नापाक होती है। तो इसको इस जुमले में बयान फरमाती है। बस ये तकहीर दोनों को शामिल है, और अगर ये अहकाम ना होते, बस ये जो पाकिजगी है ना, ये तहारत अबदान को भी शामिल हो गई और तहारत कुलूब को भी शामिल हो गई, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का हुक्म तो वुजू करना भी क्या है, अल्लाह का हुक्म ही है, ठीक है, और तयमुम करना अगर पानी मौजूद नहीं है या उससे नुकसान का अंदेशा है तो अल्लाह का हुक्म ही है ना तयमुम करना, ठीक है। और उसी तरह से जनाबत से निकलने के लिए गुसल करना, ये भी अल्लाह का हुक्म ही है ना, ठीक है। तो ये अल्लाह का हुक्म जो है फिर अबदान में भी शामिल हो गया, के ऊपर भी अप्लाई हो गया और अरवाह के ऊपर भी अप्लाई हो गया। और अगर ये अहकाम ना होते तो कोई तहारत हासिल ना होती, और ये मंजूर है कि तुम पर अपना इनाम तमाम फरमा, यानी ये अल्लाह ताला को मंजूर है कि अपने इनाम को जो है तुम्हारे ऊपर तमाम फरमाते। देखें अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, अल्लाह ताला ने जो है वो दुनिया को भी बनाया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फिर इस दुनिया को और इस रहने वाले इंसानों को जो है वो आजमाइश के लिए बनाया, ठीक है। दुनिया जो है वो आजमाइश की जगह है, इंसानों की आजमाइश की जगह, तो उसमें फिर अल्लाह ताला ने कैसे आजमाइश करनी थी, अल्लाह ताला ने जो उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाए, जिस तरह से कि हम किसी बच्चे की आजमाइश करते हैं तो उसके लिए क्विज बनाते हैं, उसके लिए एमसीक्यूज बनाते हैं, उसके लिए कोई और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसी तरह से पता चलता है ना कि हाँ भाई कितना आता है उसको, कितना उसने मेहनत करी है, कितना उसने बात को समझा है। तो अल्लाह ताला का यही तरीका है कि अहकाम बनाए, तो अगर अहकाम के ऊपर अमल करते हैं तो फिर तहारत हासिल होती है, और अगर अहकाम पे नहीं अमल करते तो फिर तहारत हासिल नहीं होती। तो तहारत हासिल होने से फिर क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि भाई आप एग्जाम में पास हो गए, बल्कि उसके ऊपर फिर इनाम भी, ठीक है, अल्लाह ताला खुश भी होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि हम जैसे लोग हैं, वो हम तो बच्चों से एमसीक्यूज करवाते हैं लेकिन इनाम नहीं देते बच्चों को, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह देंगे, फिक्र ना करें। तो खाली आपने जो है एमसीक्यूज करवा लिए और उसके बाद जो बच्चों ने जो है ना वो सही से जवाब दे दिए, लेकिन बस खत्म हो गया, इनाम इनाम कोई नहीं मिलना, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला जो है वो अच्छे रिजल्ट लाने के ऊपर इनाम भी वो बढ़ चढ़ करके देते हैं, लियुतिम बने मतलब, ठीक है। तो नहीं बस गुरु ने लियुतिम बने मतलब। अच्छा क्या लिखा आपने, वजूद में रहने से रिस्क की बरकत के बारे में गालबन हदीस है। हाँ, हालत वुजू में रहने से जो है वो रिस्क की बरकत, ये तो बड़ों बड़ों से सुना है और शायद हदीस ही है, मुझे सुनते हैं। तो ज़ाहिर वुजू में रहने का मतलब यही है ना कि जनाबत से तो निकल आया ना। अच्छा, हालत जनाबत से जो है वो वुजू करके नहीं निकला जा सकता, हालत जनाबत से निकलने के लिए तो फर्ज गुसल ही करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर फर्ज गुसल के अंदर ही इंसान का वुजू भी हो जाता है, तो दोनों ही काम हो जाते हैं गुस्ल के अंदर। इसलिए अहकाम की तकमील फरमाई ताकि हर हाल में तहारत बदनी व कल्बी, जिसका समरा रजा व कुर्ब है, जो आजम नेम है, हासिल कर सके, ठीक है। यानी जब तुम इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म करोगे तो उससे अल्लाह ताला की रजा मिलेगी और अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा। कुर्ब का मतलब भी रजा ही होता है, रजा का मतलब भी कुर्ब ही होता है, दोनों एक ही मफहूम रखते हैं। ताकि तुम इस इनायत का शुक्र अदा करो, शुक्र में इम्तिसाल भी दाखिल है, तुम शुक्र अदा करो, शुक्र में इम्तिसाल भी दाखिल है। इम्तिसाल का मतलब क्या, फर्मा बरदारी, अहकामात की फर्मा बरदारी, ये शुक्र में दाखिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उसके हुक्मों को तोड़ रहे, ठीक है ना। ऐसे शुक्रिया जो है ना वो तो कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, ना कि इंसानों का परवरदगार उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। आपकी अम्मी जो है वो आपको कोई हुक्म दें और आप कहें अम्मी मैं आपको जो है ना वो मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अम्मी कहें बेटा जरा पानी तो ला दो। अम्मी आप मैं इतना शुक्रगुजार हूँ आपकी, आप इतनी प्यारी हैं, आप इतनी अच्छी, बेटा जरा पानी तो ला दो। अम्मी बस मैं आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम इंडेटेड टू यू, राइट, यू डिड सो मच फॉर मी, बेटा पानी तो ला दो। नहीं, पानी पानी लाना जरा मुश्किल काम है, रहने देना, मैं आपकी इतनी तारीफें तो कर रही हूँ ना, नहीं पानी वानी छोड़े ना, आप रहने दे पानी वानी को, आप तारीफें सुने अपनी मेरे मुंह से, शुक्रिया सुने आप मेरे मुंह से अपने, तो फिर क्या ख्याल है आपका, आपकी बेटी आपके साथ करे तो फिर कितना मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला के साथ तो ये नहीं चलता, ये तो अम्मी के साथ नहीं चलता, अल्लाह ताला के साथ कैसे चलेगा, ठीक है। तो शुक्र में इम्तिसाल यानी फर्मा बरदारी और मानना ये भी दाखिल है, इसके बगैर शुक्र नहीं होता। क्या बच्चे को एक पारा खत्म होने पर इनाम देना चाहिए, लाइक कोई गिफ्ट, जैसे अम्मा से पारा हिफ्ज हो जाए? या आपने वैसे मौके की मुनासबत से सवाल बड़ा अच्छा किया है, इस वजह से पढ़ते हैं पूरा सवाल। या पूरा हिफ्ज के बाद कोई हदिया देना चाहिए, बच्चों का अप्रिसिएशन जरूरी होती है स्पेशली कुरान की बात पर। जी, आपको उन्हें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको जो है वो कोई हदिया भी दे देना चाहिए, लेकिन एक बात का बस ख्याल रखिएगा कि बच्चे जो है ना फिर इसको एक्सप्लॉइट करना ना शुरू कर दें, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है ना, और हमने देखा है ऐसा होते हुए, इस वजह से आपको खबरदार कर रहे हैं कि फिर बच्चे जो है ना वो या तो खाली इनाम के लिए काम करना शुरू हो जाते हैं, या ये कि ना फिर वो बाकायदा शर्त भी लगा देते हैं कि अच्छा मुझे मिलेगा तब मैं करूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए कि बच्चा उल्टा आपके ऊपर सवार हो जाए। तो इस वजह से ना इनाम देना है तो उसमें कोई ऐसी बाकायदगी ना रखें कि नहीं बस पारा खत्म होगा तब इनाम मिलेगा, कोई अच्छा काम करें, ठीक है, अच्छे से सबक सुना दे तब कभी दे दें, कभी ना भी दें, ठीक है, कभी दें कभी ना भी दें, किसी पारे के ऊपर कोई इनाम दें, किसी पारे के ऊपर इनाम ना भी दें, और इस तरह से उसको एक्सप्रेस ना करें कि वो समझे कि बस मिलेगा ही, और कभी आप नहीं देंगी तो फिर वो आपके सर आपको आपके ऊपर उल्टा सवार हो जाएगा कि क्यों नहीं दिया, राइट। तो इस बातों का जरा साइकोलॉजिकली इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, तो अल्लाह ताला तो इनाम देते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला भी जो है वो क्या करते हैं, हर मरतबा कोई टॉफी मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से, कोई अच्छा काम किया आगे से जो है वो, अभी बच्चों की क्लास में भी बात हो रही थी क्या तहज्जुद पड़ी तो आगे से जो है वो मर्सिडीज गाड़ी मिल गई, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी का दिन चाह रहा था तो तहज्जुद पड़ी आगे से गाड़ी आ गई। फिर उसके बाद जो है वो कोई और नेकी का काम किया आगे से जो है वो कोई और इनाम आ गया। ऐसा होता है अल्लाह ताला ऐसे करते हैं? अल्लाह ताला ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है एक तो इनाम रखा आखिरत में, इस दुनिया में तो नजर ही नहीं आता वो इनाम, ठीक है ना। तो क्यों रखा आखिरत के अंदर? क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी साइकिक का पता था, हमारी साइकोलॉजी का पता था, ठीक है ना। तो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से अल्लाह ताला ने मामला किया आखिरत में रखा। चलो तो भाई करते रहो तुम, ऐसा नहीं है कि बस भाई अभी फौरन ने तुम्हें इनाम मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि जो इनाम मिलता भी है ना अगर इस दुनिया के अंदर, वो भी ऐसे सबटल तरीके से मिलता है, ऐसे अंदाज से मिलता है कि बहुत आसान नहीं होता अमल के साथ इनाम को जोड़ना, ये इनाम मुझे इस अमल की वजह से मिला है, नहीं इतना आसान नहीं होता इसको जोड़ना, ठीक है ना। तो वो अमल कभी कर रहे होते हैं इनाम किसी और शक्ल में जाके मिल रहा होता है, अमल कभी कर रहे हैं इनाम कभी और जा करके मिल रहा होता है, ठीक है। तो हाँ, दिल का सुकून और दिल का इत्मीनान एक ऐसा इनाम है जो कि इंसान को खराब वैसे भी नहीं होने देता, तो वो अल्लाह ताला फौरन फौरन दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये हमारी मिजाज के खिलाफ नहीं है। तो यही चीज जो है ना, देखें अल्लाह ताला मुरब्बी है ना, तो अल्लाह ताला ने वालिदैन को भी मुरब्बी बनाया है, ठीक है। तो अपने तौर तरीकों से अल्लाह ताला वालिदैन को सिखा रहे होते हैं कि मैंने जिनको तुम्हारी तरबियत में दिया है ना, तुम भी उनके साथ मुझसे सीखो मैं कैसे करता हूँ, अपने मुरब्बों के साथ मैं कैसे करता हूँ, तुम भी अपने मुरब्बों यानी जिसकी तरबियत की जाती है उसको मुरब्बा कहा जाता है, तुम भी उनके साथ ऐसे ही मामला करो, ठीक है। एक्सप्लॉइट ना कर दो उनको, उनकी आदतें खराब ना कर दो। अच्छा बहरहाल टाइम कितना हो गया, मुकम्मल हो गया, बस ये तो नहीं जल्दी से पढ़ लेते हैं वरना तो मुझे पता नहीं और पता चल जाएगा कि। और तुम लोग अल्लाह ताला के इनाम को जो तुम पर हुआ है याद करो, नेमतों को याद करो, जिसमें बड़ा इनाम है कि तुम्हारी फलाह के तरीके तुम्हारे लिए मशरू कर दिए हैं, यानी बता दिए अल्लाह ताला ने फलाह के तरीके, छुपा के नहीं रखे कि फलाह इसमें मिलेगी फलाह नहीं, बताऊंगा नहीं मैं तुम्हें किसमें फलाह मिलेगी, ऐसा नहीं किया अल्लाह ताला ने। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है ना कि तरीका बदला दिया। और इसकी इस अहद को भी याद करो जिसका तुमसे मुआहिदा किया है, जबकि तुमने उसका इल्तिजाम भी कर लिया था कि अहद लेने के वक्त तुमने कहा था कि हमने इन अहकामात को सुना और मान लिया, ठीक है। समयना व अताना तुमने कहा था, क्योंकि इस्लाम लाने के वक्त हर शख्स इसी मजमून का अहद करता है, ठीक है। जब नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आते हैं ना तो क्या, ठीक है, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं तो उनका इकरार करता है। तो भाई क्या मतलब इकरार करना, नबी अलैहिस्सलाम की बातों का इकरार करना, कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने खबरें बताई हैं उनकी तस्दीक करता है कि हाँ वाकई ऐसा ही है जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है, और जो अल्लाह ताला ने जो जो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म बताए हैं तो उनका उनकी तस्दीक कैसे करता है कि हाँ ये हुक्म है, किसके हुक्म है, अल्लाह के हुक्म है, ठीक है। तो ईमान लाने का यही मतलब होता है, तो अब एक एक ये नहीं होता कि ईमान लेकर के आ रहे हैं मुसलमान हो रहे हैं कलमा शहादत पढ़ रहे हैं तो अब जो है वो आपसे कोई फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, ठीक है, कि मैं इसका इकरार करता हूँ कि मैं नमाजें पढ़ूंगा, फिर दूसरा फॉर्म है चेक बॉक्स लगा हुआ है कि जी मैं रोजे रखूंगा, फिर एक चेक बॉक्स बना हुआ है कि जी जो है वो जकात दूंगा, अच्छा झूठ नहीं बोलूंगा इसका चेक बॉक्स बना हुआ है, पूरा मैंने फॉर्म फिल कर लिया, या मुझे पढ़ करके सुनाई गई और मैंने कहा कि हाँ मैंने सुन लिया, मैंने जो है वो इसकी अतात की जो है वो एग्री कर लिया कि मैं सबको मानूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ना तो हम ऐसा करते हैं और ना सहाबा कराम ने ऐसा किया। तो सहाबा कराम ने क्या किया था, सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम के हाथों के ऊपर बैत करी थी कि हाँ हम आपको मानते हैं आप अल्लाह के रसूल, ठीक है। और हम चूंकि नबी अलैहिस्सलाम का हाथ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, हम रोजे मुबारक के अंदर जाकर के थोड़ी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर बैत कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कलमा शहादत पढ़ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्लाह के साथ, ठीक है, मैं शहादत देता हूँ मैं गवाही देता हूँ, ये सारी चीजों को कवर कर लेता है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सहाबाए कराम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर हाथ रख के बैत करते थे, या सहाबियात जो है वो हाथ पर हाथ रखे बगैर बैत करती थी, वो जिस तरीके से इकरार करती थी ना उसी तरीके से हम भी इकरार करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह, ठीक है। इसके अंदर सारे अहकामात कवर हो जाते हैं इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली एक एक हुक्म सुनना, उसके ऊपर एग्री करना और डिसएग्री करना, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिटली एवरीथिंग इज कवर्ड। तो हम भी फिर इसी के अंदर दाखिल है, अगरचे कि कोई कहे कि मैंने तो कभी नहीं कहा था समय ना हुआ था ना, तो मैं तो क्यों करूं मैं वाला काम, मैंने तो कभी नहीं कहा। भाई आपने अशहदु अल्लाह कहा है ना, तो अब आपके ऊपर ये है। अब जो है वो जो कहता ही नहीं है, तो इसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुसलमान तो है, नाम मोहम्मद है, नाम अब्दुल्ला है, नाम इब्राहिम है, नाम फलाना है, नाम ढमकाना है, लेकिन जो है ना तो कभी जुबान से कहा ना दिल से कभी इसके बारे में सोचा, क्योंकि अच्छे A+ ग्रेड लाने थे, तो मैं तो सारी जिंदगी जो है वो साइंस ही पढ़ता रहा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता रहा, और इंग्लिश और उर्दू पढ़ता रहा, और जो है बायोलॉजी पढ़ता रहा, और ये पढ़ती रही और वो पढ़ती रही, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बात के ऊपर। अच्छा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कोई चीज होती है, ये भी कहना होता है। तो फिर तो यही होता है जो उसे लोग हो रहा है, पर पूरी दुनिया के अंदर किसी को कुछ पता ही नहीं है ईमान क्या चीज होती है ना। नाम के मुसलमान भी हैं, नमाजें भी पढ़ लेते हैं या कुछ और भी काम कर लेते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा होता है, देखा देखी हो रहा होता है, ठीक है ना। देखा देखी हो रहा होता है, अम्मी के देखा देखी नमाजें पढ़ ली, अब्बू के देखे देखी जो है वो कुछ और काम कर लिए, ठीक है ना, गोइंग विद द फ्लो। ईमान होता क्या है यही नहीं पता, इकरार कभी नहीं किया, कभी इसका इरादा ही नहीं किया, चल रहा है बस मामला। तो चल रहा है मामला, तो फिर उसके बाद वही होता है जो कि दुनिया के अंदर हालात मुसलमान के बने हुए हैं। ये इस्लाम है नहीं जैसा कि हमने दुनिया के अंदर इस वक्त बनाया हुआ है, ठीक है। वो तो मरने के बाद पता चलेगा कि कौन कहाँ पहुंचा, तो पीछे आके बताता भी कोई नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में, लेकिन मेरे साथ ये हो गया, कोई बताने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो बस बस सीखना पड़ता है ना इन चीजों को, जो नहीं सीखता तो फिर अल्लाह याद कर। खैर, फरमाते हैं कि हमने इन अहकाम को सुना और मान लिया, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद हर शख्स इस मजमून का अहद करता है। हम कब इस्लाम लेकर के आए? वी शुड लुक बैक एंड आस्क आवर सेल्व्स, हम कब इस्लाम लेकर के आए थे? और अल्लाह ताला की मुखालफत से डरो, बिलाशुबा अल्लाह ताला दिनों की बातों की पूरी खबर रखते हैं, इसलिए जो काम करो उसमें इखलास व एतकाद भी होना चाहिए, सिर्फ मुनाफिकाना इम्तिसाल काफी नहीं है। मुनाफिकाना इम्तिसाल का मतलब ये भी होता है कि आपको हुक्म का पता है और आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं उसको मानता हूँ, और मुनाफिकाना इम्तिसाल के अंदर ये भी शामिल है कि देखा देखी कर रहे हैं, ठीक है ना, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, देखा देखी, जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, पता ही कुछ नहीं, मान वान कुछ नहीं रहे, बगैर माने कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बगैर माने कोई काम करना, इसी को निफाक कहते हैं, ठीक है, इसी को मुनाफिकाना इम्तिसाल कहते हैं। मतलब ये कि इन अहकाम में अव्वल तो तुम्हारा ही नफा है, फिर तुमने अपने सर पर भी लिया है, फिर मुखालफत में जरर, इन वजूह से इम्तिसाल ही जरूरी हुआ, और वो भी दिल से होना चाहिए, वरना मिसल अदम इम्तिसाल ही के, ठीक है, मिसल अदम इम्तिसाल ही के, यानी दिल से अगर मानना नहीं है तो फिर वो अदम इम्तिसाल है, यानी वो ना मानना है, अगर दिल से इकरार नहीं है, दिल से तस्दीक नहीं है, तो वो ना मानना है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे, और हमें कम अज कम मरने से पहले पहले जो है वो दिल से नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने की, और नबी अलैहिस्सलाम की जो बताई हुई आयात और अहकामात हैं उनको अल्लाह का हुक्म मानने की तौफीक अता फरमा दे। वाफ़िर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।